भारत भूमि पर अवतरित हुए महापुरुषों में से आदि शंकराचार्य का नाम कुछ विशेष है। आदि शंकराचार्य वो थे जिन्होंने ऋषि मुनियों के ज्ञान का निचोड़ हमें शुद्धतम रूप से उपलब्ध करवाया। उससे पहले जैसे ज्ञान के मोती यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, उन्होंने एक परमहंस की भांति उत्कृष्ट मोतियों को चुक कर इकट्ठा किया, जिसके परिणाम से सनातन धर्म की कीर्ति को पुनः स्थापित किया गया। आज हम वेदांत के महान गुरु आदि शंकराचार्य को समझने का एक प्रयास करेंगे। यह कहानी हमें आज से लगभग 2800 वर्ष में वापस ले जाती है। भारत में बौद्धिक पूर्ण जागरण का समय था। लोग जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोज रहे थे। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बुद्ध धर्म के अनुयायी चुनौती दे रहे थे। इस सांस्कृतिक क्रांति के बीच आदि शंकराचार्य एक युवा और प्रतिभाशाली विद्वान, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो भारतीय दर्शन को नई आकृति प्रदान करने वाले थे। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से ग्राम में 788 ईसा पूर्व में हुआ। आदि शंकराचार्य ने कम उम्र में ही अपनी बुद्धिमता और आध्यात्मिकता की गहराई समझ सिद्ध कर दी थी। जब वह सिर्फ 8 वर्ष के ही थे, तब तक उन्होंने पूरे वेदों को कंठस्थ कर लिया था। समय के साथ उन्होंने विभिन्न शिक्षकों और गुरुओं के अधीन अध्ययन किया, जिससे उनके ज्ञान और समझ में अपार वृद्धि हुई। आदि शंकराचार्य अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत में हर प्रदेश में जाकर अपने वेदांत दर्शन का प्रचार कर रहे थे। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन असाधारण अनुभवों और मुठभेड़ों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ घटनाएं पुरानी कथाएं बन गई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उनको पराजित किया और अपना शिष्य बना लिया। उनमें से मंडल मिश्र और आदि शंकराचार्य की कहानी कुछ विशेष महत्व रखती है। मंडल मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच की बहस भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक लड़ाइयों में से एक है। मंडल मिश्र अपने समय के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और मीमांसा दर्शन के अनुयायी थे, जबकि आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे, जो कि गैर द्वैतवाद पर केंद्रित विचार का एक स्कूल था। इन दो विद्वानों के बीच बहस कई दिनों तक चली, जिसमें जीव की वास्तविकता, ईश्वर के अस्तित्व और धर्मशास्त्रों की वैधता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। विजेता के रूप में दाव ऊंचे थे। विजेता को उस समय का महानतम दार्शनिक पद मिलने वाला था। आज एक कालातीत शास्त्रार्थ होने वाला था, जिसमें भारतीय दर्शन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आदि शंकराचार्य का मानना था कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है, और यह स्वयं के बोध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अद्वैत दर्शन का पक्ष रखा, जो इस बात पर जोर देता है कि परम वास्तविकता अद्वैत है और समस्त संसार और ब्रह्मांड एक सर्वोत्तम वास्तविकता ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब धरती पर उपस्थित भिन्न भिन्न स्रोतों पर पड़ता है, परंतु वास्तविक सूर्य तो एक ही है, उसके अनेकों प्रतिबिंब मिथ्या हैं, वैसे ही सारा जगत ब्रह्म के प्रतिबिंबों के रूप में प्रसारित होता है, परंतु है तो मिथ्या ही, सत्य केवल ब्रह्म है। लेकिन आदि शंकराचार्य के विचारों को पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रचार करने वाले प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र ने चुनौती दी। मंडल मिश्र का मानना था कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि और आनंद प्राप्ति करना है, और यह कर्म कांड या उत्तम कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य, आप मानते हैं कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि और आनंद है, लेकिन यह परम वास्तविकता नहीं और शय के अधीन है। क्या होता है जब भौतिक दुनिया मिट जाती है? मंडल मिश्र, लेकिन अनुष्ठान हमें पूर्णता और अदृश्य की भावना देते हैं, जो कि अंततः आनंद प्राप्ति का साधन है। आदि शंकराचार्य, लेकिन आनंद क्या है? क्या वह वास्तव में भौतिक धन और सुख की खोज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? भौतिक शरीर सुख समृद्धि का नाश उसके जन्म के साथ ही स्वयं फलित होते हैं। और इस तरह से आदि शंकराचार्य और मंडल मिश्र के बीच बहस शुरू हो गई, या कई दिनों तक चलती रही, और जिसमें जीव की वास्तविकता कि प्रकृति से लेकर मानव जीवन के अनुष्ठानों की भूमिका तक कई विषयों को शामिल किया गया। आदि शंकराचार्य परम वास्तविकता अद्वैत है और सब कुछ एक सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मंडल मिश्र, वे शुद्ध चेतना जैसी अमूर्त चीज का प्रमाण नहीं हो सकते, वे केवल मनुष्य की परम भलाई के लिए खड़े एक रहस्य उद्घाटन है जो कि भौतिक समृद्धि और आनंद है। आदि शंकराचार्य, लेकिन वेदों के दो खंड है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। उत्तरार्थ वेदों के वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है जो कि परम वास्तविकता की समझ और उससे मनुष्य का संबंध है। कई दिनों तक बहस चलती रही, प्रत्येक विद्वान ने अपने तर्क और प्रतिवाद बड़ी कुशलता और विद्वता के साथ प्रस्तुत किए। अंत में आदि शंकराचार्य विजयी हुए और मंडल मिश्र और उनकी पत्नी उमा भारती ने हार स्वीकार कर ली। आदि शंकराचार्य के अनुयायी बन गए। हालांकि कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। उमा भारती, जो अपने आप में एक विद्वान थी, ने आदि शंकराचार्य को एक बहस के लिए चुनौती दी। यह तर्क देते हुए कि वेदों ने एक पत्नी को पति के शरीर के आधे हिस्से के रूप में निर्धारित किया है और केवल उसे हराकर ही आदि शंकराचार्य जीत का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अब उदय भारती और शंकराचार्य के बीच बहस कई दिन तक चलती रही, जिसमें उदय भारती ने जटिल तर्क पेश किए और आदि शंकराचार्य को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब उदय भारती ने महसूस किया कि शंकराचार्य उन पर हावी हो रहे हैं, तो उमा भारती ने शंकराचार्य से ग्रस्त आश्रम के बारे में, पत्नी और पति के बीच में निजी संबंधों के बारे में प्रश्न शुरू कर दिया, जो कि आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी होने के कारण जिसके उत्तर देने में असमर्थ थे। उमा भारती ने कहा, आपको अगर इन प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई आ रही है तो आप कुछ समय ले सकते हैं और आप इन पर अध्ययन करने के बाद फिर से मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अंत में आदि शंकराचार्य को इस विषय की गहराई से अध्ययन करने के लिए चले गए। योगिक शक्ति के बल पता चला कि एक राजा जिसने अभी अभी प्राण त्यागे थे, शव सैया पे सोया हुआ था, तो उन्होंने अपने शिष्य को अपने शरीर को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने अस्थाई रूप से मरने वाले राजे के शरीर में प्रवेश करने के लिए छोड़ दिया। राजा एक बहुत दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नियां उसके प्रति वफादार थी। जब राजा अपनी मृत्यु शैया पर था तो उनकी आंखों में आंसू थे। अचानक जब राजा का शरीर उठा तो पत्नियों में से एक ने देखा कि राजा रहस्यमयी परिस्थितियों में ठीक हो गया है और एक बदला हुआ आदमी प्रतीत होता है। आदि शंकराचार्य ने उस महिला से यह सब कुछ सीखा जो स्त्री पुरुष संबंधों और अनुभवों के बारे में जानने की जरूरत थी। इस नए ज्ञान से प्रभावित होकर वह उमा भारती के साथ फिर से बहस करने के लिए लौट गए। इस बार वह स्पष्ट रूप से अपराजित थे। उमा भारती और मंडल मिश्र ने आदि शंकराचार्य और वेदांतियों के अनुयायी बनकर विनम्रता से अपना सर झुका लिया और हार स्वीकार कर ली। आदि शंकराचार्य केवल एक ज्ञानी और विद्वान नहीं थे, बल्कि उससे भी बहुत अधिक थे। वह एक ऋषि, एक योगी, एक जगत गुरु थे। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की और वेदांत के संदेश का प्रसार किया। आदि शंकराचार्य ने देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की, ताकि संपूर्ण भारत में आध्यात्मिकता का प्रकाश फिर से चमके। यह महापुरुषों की विशेष करुणा होती है, जिस वजह से वे कुछ पाने के बाद खुद कष्ट उठाकर लोगों को भी जागृत करने का प्रयास करते हैं। आदि शंकराचार्य के परम चरणों में मेरा शत शत नमन।